نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سورة البقرة، إن شاء الله تعالى آج هم آية نمبر 124 سے 131 تک کریں. لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ ڈسکشن جو تقریباً پانچویں رکوع سے شروع تھی وہ یہاں پہ آ کے اینڈ ہو گئی، جو بنی اسرائیل سے خطاب کیا جا رہا تھا اور ان کے چھٹے رکوع سے آگے سے ان کے سارے جرائم بتائے گئے. اب یہاں سے آگے تحویل قبلہ کی آیات آ رہی ہیں. تحویل قبلہ کیا ہے؟ یعنی قبلہ اب شفٹ ہو رہا ہے. پہلے قبلہ کیا تھا؟ جو بنی اسرائیل کا قبلہ تھا، بیت المقدس. اب قبلہ شفٹ ہو کے کدھر آ رہا ہے؟ بیت اللہ، مسجد حرام. یہ اب قبلہ بننے والا، کیونکہ امت نہیں آ رہی ہے نا، ایک نئی امت ہے جس کو امامت دی جانے والی ہے. ٹھیک ہے، اب امامت چونکہ شفٹ ہو رہی ہے تو قبلہ بھی شفٹ ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس سے پہلے ان کو ساری باتیں بتا دی گئی، یہ تمہاری خرابیاں، یہ تمہارے عقیدے میں، یہ تمہارے اعمال میں، یہ سب آپ نے پڑھی ہے نا، تاکہ ایک ان کے اوپر ایک حجت ہو جائے کہ دیکھو اس وجہ سے اب آپ کو معزول کیا جا رہا ہے، یعنی جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ اب آپ کو اس عہدے سے ہٹایا جا رہا ہے. یہ جو مقام آپ کو ملا ہوا تھا 2000 ایئر سے، آپ اس کو انجوائے کر رہے تھے امامت کا، یہ اب آپ سے لے کے امت مسلمہ کو دیا جانے لگا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس سے پہلے تھوڑی سی بات اس قبلے کی جا رہی ہے جس کی طرف اب امت مسلمہ کو منہ کرنا ہوگا. اب یہ نیا قبلہ، نئی امت ہے نا، تو تھوڑی سی قبلے کی ہسٹری آ رہی ہے. اس قبلے کو کس نے بنایا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام نے. اور ابراہیم علیہ السلام وہ ہیں کہ جن کو سارے ہی مانتے تھے، یہود بھی، نصارہ بھی، مشرکین مکہ بھی. جیسے ہم نے پہلے بات کی تھی کہ وہ بھی کہتے تھے ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اور ان کے طریقے پہ. تو دیکھیں، جب بھی یہاں پہ کتنی بڑی ہمیں حکمت پتہ چلتی ہے دعوت دینے کی، کہ جب آپ نے دعوت دینی ہو نا تو کسی کو کامن گراؤنڈز پہ لے کر آئیں. ٹھیک ہے، یعنی ایک چیز جو آپ بھی مانتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں، اس چیز کے اوپر لے کر آئیں گے تو بات کرنی زیادہ آسان ہو جائے گی. اور یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کی ہی بات کی گئی کیونکہ ان کو سارے ہی مانتے ہیں. دیکھیں، ایک کنٹروورسی ہو جاتی ہے کوئی موسیٰ علیہ السلام کی ذات میں، عیسیٰ علیہ السلام کی ذات میں، کوئی ان کو مانتا ہے، کوئی ان کو نہیں مانتا، کوئی کسی کو مانتا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو سارے ہی مانتے ہیں. تو آئیں ذرا ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ دیکھتے ہیں. تم لوگ سارے کہتے ہو کہ ہم صحیح ہیں، ہم صحیح ہیں، ہر ایک کہتا ہے. ابراہیم علیہ السلام دیکھیں کیسے تھے. وَإِذْ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ، اور جب آزمایا کس کو؟ ابراہیم علیہ السلام کو. کس نے آزما لیا ان کو؟ کس نے امتحان لے لیا ان کا؟ ربہو، اس کے رب نے. امتحان لینے والا ممتحن کون ہے؟ رب خود ممتحن ہے. اور امتحان لیا کس کا جا رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا. ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ایسے ہی نہیں بن گئے، بڑے امتحانوں سے گزر کے بنے. ابراہیم علیہ السلام 6120 BC جس کو کہتے ہیں، یعنی قبل مسیح، میں بابل کے شہر میں پیدا ہوئے تھے، یہ کہا جاتا ہے. یعنی ہسٹری کی جو کتابیں اب تک جو ہیں ان کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ وہاں پیدا ہوئے تھے، اور یہ شہر بغداد میں تھا، یعنی عراق میں تھے پیدا ہوئے. ٹھیک ہے، اور اب جو نئی 1920s میں کچھ کھدائی وغیرہ ہوئی تو آثار بھی ملے اس شہر کے بھی کہ یہاں پہ اس طرح کی آبادی تھی. تو ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے آزمایا. کس چیز سے آزمایا؟ بھی کلمات، سات چند باتوں کے. फअतम्महुन्ना, तो उसने पूरा कर दिया। अच्छा, अब एक एक चीज को देखें। यहाँ पे बहुत जबरदस्त आयत है जिसमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी को समझ ले, इतनी खूबसूरती से समअप कर दिया गया। एक आयत में सारी जिंदगी बता दी गई कि उनकी जिंदगी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने आजमाया किस चीज से, भी कलिमातिन, सात चंद बातों के। अब इसके दो माने हैं कलिमात के। एक माना क्या है, यानी इम्तिहानों से इम्तिहान लिए उनके, ठीक है, आजमाइशें आई उनके ऊपर, टेस्ट से ही आजमाया जाता है ना। तो क्यों उनके टेस्ट लिए गए, क्या वजह थी, इम्तिहान क्यों लिया जाता है? आपके बच्चों के इम्तिहान होते हैं, क्यों लेते हैं इम्तिहान स्कूल वाले, कॉलेज वाले, यूनिवर्सिटी वाले? क्या बहुत बुरा करते हैं उनका इम्तिहान लेके? बताएं, आप इम्तिहान के हक में हैं या नहीं है? ऐसे एक आम बात मैं पूछ रही हूँ, इस चीज को अभी एक तरफ रखें। इम्तिहान होना चाहिए बच्चों का स्कूलों में या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। क्यों होना चाहिए? इसलिए इम्तिहान देंगे तो फिर ही नेक्स्ट ग्रेड में प्रमोट होंगे। अगर इम्तिहान ही ना हुआ तो सदा ही फिर नर्सरी में ही बैठे रहेंगे वो। तो इम्तिहान किस लिए लिया जाता है फिर? क्या उनको मुसीबत में डालने के लिए, मुशक्कत में डालने के लिए, परेशान करने के लिए, आपको परेशान करने के लिए? नहीं। हाँ, होते जरूर है इम्तिहान, बड़े मुश्किल होते हैं, परेशानी भी होती है उनमें, लेकिन आप क्यों राजी रहते हैं इम्तिहानों पे? इसलिए कि काबिलियत सामने आए, कौन फर्स्ट पोजीशन वाला है, कौन सेकंड पोजीशन वाला है, कौन थर्ड वाला है, कौन है जो फेल है, कौन कितना काबिल है पता तो चले, इसलिए इम्तिहान लिया जाता है ना। कौन कितने काम का है ये पता चले, काबिलियत निकल के सामने आती है। ऐसे तो सारे ही बच्चे कहेंगे हम बड़े लायक हैं, लेकिन जब इम्तिहान लिया जाता है तो तब पता चलता है ना कौन कितना लायक है। तो याद रखिए, इसी तरह अल्लाह ताला भी इम्तिहान लेते हैं बंदे का। और अल्लाह ताला क्यों इम्तिहान लेते हैं? हम घबराते हैं, हम परेशान होते हैं, इम्तिहान 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 अल्लाह ताला इसलिए नहीं लेते कि आपको कोई परेशान करना है, आपको अल्लाह ताला कोई तकलीफ में डालना चाहते हैं, नऊजु बिल्ला। नहीं, इम्तिहान इसलिए लिया जाता है पता चले खरा कौन है, खोटा कौन है, सोना कौन है और धात कौन है, आम सी धात कौन है, पता चले। वरना तो हम सारे ही कहेंगे मेरे ऊपर कोई वक्त आए तो मैं तो जान दे दूंगी, मैं ऐसे कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, वो कर दूंगी। अल्लाह ताला फिर आजमा लेते हैं, अच्छा फिर टेस्ट किया जाए, देखा तो जाए कितने पानी में हो भाई तुम, ठीक है। इम्तिहान इंसान की सलाहियतों को निखार देता है, वो सामने आ जाता है, निखर जाता है। तो इम्तिहान तो अगर इंसान सोचे तो बहुत इंसान के दर्जे बुलंद करने वाली चीज है। अल्लाह ताला ने अपने प्यारों को भी आजमाया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की भी आजमाइश हो गई, इतने बड़े पैगंबर हैं, इनकी भी आजमाइश हो गई। और हम सोचते हैं हम बगैर आजमाइश के निकल जाएंगे, हम सोचते हैं कि हमारा तो कोई इम्तिहान ना होना चाहिए, ना हम इम्तिहान दे सकते। लेकिन अल्लाह ताला ने तो फरमाया नबलुवक्कुम, नहीं, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमल। अल्लाह ताला ने मौत और जिंदगी को पैदा ही किस लिए किया, कि वो आजमाए तुमको, कौन है तुम में से जो आसन अमल करने वाला। तो अल्लाह ने तो आजमाना है, जरूर आजमाना है, वो जरूर आजमाएगा। तो हमारे लिए क्या है इसके अंदर बात समझने की, सोचने की, कि आजमाइश आती है, इम्तिहान आता है। अल्लाह ने प्यारों को भी आजमाया, और जितनी बड़ी आजमाइश होती है उतनी बड़ी इंसान को फिर कामयाबी भी हासिल होती है, तो इनाम भी तो उतना बड़ा होता है। देखिए, जो इम्तिहान देते हैं उसके बाद ही उनको पोजीशंस मिलती हैं, और फिर उसके बाद ही उनको ट्रॉफीज मिलती हैं, और उनके नाम अखबारों में छपते हैं, और फिर वो कितने उनकी वो होती है, मतलब उनका दर्जा बड़ा हो जाता है, ऊपर हो जाता है ना। वो इम्तिहान लिया गया तो तभी है ना, अगर इम्तिहान ही ना लिया जाता तो पोजीशंस किसकी आती, तारीफ किसकी होती, अगले दर्जे में कौन जाता। तो आजमाए जितनी बड़ी होती है उतना ही बड़ा इनाम होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि کہ آزمائش جتنی سخت ہوتی ہے اتنا ہی بڑا انعام ملے گا. شرط کہ آدمی ظاہر ہے اس وقت گھبرا نہ جائے, صبر کرے. اور اللہ تعالیٰ جب کسی گروہ سے محبت کرتا ہے تو ان کو آزمائشوں میں ڈالتا ہے, سبحان اللہ, کہ مزید نکھر جائیں, ان کو صاف کرنے کے لیے, کھرے کھوٹے کو الگ کرنے کے لیے. پھر فرمایا بس جو لوگ اللہ کے فیصلے پر راضی رہیں اور صبر کریں تو اللہ ان سے خوش ہوتا ہے. کہ تم اللہ سے راضی رہنا, اللہ تم سے راضی ہو گیا. اور جو آزمائش میں اللہ سے ناراض ہوں تو اللہ بھی ان سے ناراض ہو جاتا ہے. یہ ترمذی کی روایت ہے. تو کتنا بڑا ہمارے لیے سبق ہے اس چیز میں کہ ابراہیم علیہ السلام کو آزمائشوں میں اللہ نے ڈالا, آزمائشوں کی بھٹی میں ڈالا. ایک کے بعد ایک آزمائش ان کے اوپر آئی اور ان ساری آزمائشوں سے وہ گزرے, کامیاب ہوئے. اور پھر وہ مقام ابراہیم علیہ السلام کو ملا کہ اللہ تعالیٰ نے خود تعریف فرمائی ابراہیم علیہ السلام کی, اور کیا فرمایا کہ ابراہیم تو وہ ہے جس نے وفا کا حق ادا کیا. وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى, ابراہیم نے وفاداری کی, پورا کر کے دکھایا, سند مل گئی کامیابی کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. سبحان اللہ, کہ جب اللہ نے ٹیسٹ کیا تو وہ کیسے پورے اترے. سب سے پہلا ٹیسٹ ان کے پر کیا تھا, ابراہیم علیہ السلام. کہ دیکھیں جب بالکل شرک کے اندھیرے ہیں, کھٹا ٹوپ اندھیرے, کہ کوئی وہاں پہ توحید کا نام لیوا بھی نہیں ہے, ایک بھی بندہ نہیں, اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ کھولی ہے ایسے ماحول میں, اور ایسے ماحول میں ابراہیم علیہ السلام نے ایک اللہ کا نام لیا, اپنی فطرت سے توحید کو پہچانا. فطرت اللہ نے اندر ڈالی ہے نا, اس سے توحید کو پہچانا. ورنہ وہاں پہ بت پرستی تھی, ستارہ پرستی تھی, بادشاہ بھی خدا بن کے بیٹھا ہوا تھا, کسی کو بھی پوچھ سکتے تھے وہ. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آزما لیا کہ دیکھتے ہیں کتنی ہمت ہے اس کے اندر. وہ ہمت بھی ہے کہ ایسے ہی بس, کوئی ارادہ بھی ہے کہ یہ تو نہیں ہے کہ بھائی جو جدھر کو موڑ لے ادھر کو موڑ گئے. کیسے اللہ تعالیٰ نے آزما لیا کہ اس ماحول میں سارے بتوں کو توڑ کے اور ان سب لوگوں کو فیس کیا. کتنی جرت کی بات ہے نا, کتنی ہمت کی بات. اور ان سے کہا, جب انہوں نے ان کے سوالوں کے جواب, آپ کو سب کو یہ واقعہ پتا ہے, جب وہ سوالوں کے جواب نہیں دے سکے اور جو کلہاڑا تھا وہ بڑے بت کے کندھے پہ رکھا ہوا تھا, انہوں نے کہا یہ تو نہیں بولتا. جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اس نے توڑا سارے بتوں, کہنے لگے توف ہے تم پہ اور تمہارے معبودوں پہ کہ جو نہ بول سکتے نہ سن سکتے, تم ان کو پوچھتے ہو. آپ خود سوچ لیں کہ آپ اکیلے مسلمان ہیں اور ہندوؤں کا بہت بڑا ایک موب وہ آ گیا اور لوگ فیوریس ہوئے میں, اتنے غصے میں, کسی نے ان کے مندر کو کچھ کر دیا. اس وقت کوئی کلمہ حق بول کے دکھائے, سوچے پتا ہوا کہ اب اگر میں نے کچھ ایسا بولا نا یہ تو تکا بوٹی کر دیں گے. کتنا بڑا امتحان وہ اس میں پاس ہوئے, ہمت دلیری بہادری. پھر نمرود کے ساتھ جو مناظرہ کیا تھا, ایک بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا, جب اس نے کہا تھا کہ میں اس کو زندہ کر سکتا ہوں اور مار سکتا ہوں, اور پھر انہوں نے کہا سورج کو نکالنے کا اور غروب کرنے کا, وہ ساری باتیں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. تو وہ مضبوط ہو کے رہ گیا. کتنی دلیری کی بات ہے. اسی لیے حدیث میں ہے نا کہ سب سے بڑا جہاد یہ کہ ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا. پتا ہے کہ یہ چاہے تو آنکھیں نکلوا دے, یہ چاہے تو الٹا لٹکوا دے, لیکن وہاں پہ بولنا حق کی بات. پھر آگ میں جب آگ بھڑکائی گئی تو ان لوگوں نے تو یہ سوچا تھا کہ ڈر جائے گا یہ اور یہ فوراً توبہ کر لے گا کہ میں نے جو کیا غلط کیا ہے, میں وہی کرتا ہوں جو آپ کہتے ہیں. لیکن ہوا کیا, الٹ ہو گیا. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں, کہ کیسے ابراہیم علیہ السلام اس میں بھی داخل ہو گئے. پھر باپ نے کہا میری نظروں سے دور ہو جا ورنہ میں تجھے رجم کر دوں گا, گھر چھوڑ دیا. اتنا بڑا امتحان. हाँ छोड़ के दिखाए कोई अल्लाह की खातिर घर नहीं, हम पैसों के लिए, जॉबों के लिए, दुनिया के बड़ी बड़ी एजुकेशन और यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए तो घर छोड़ सकते हैं। अल्लाह की खातिर कौन है जो घर छोड़ के दिखाए? फिर उसके बाद ये कितना बड़ा इम्तिहान था, अल्लाह अकबर, कि जब बेटे और बीवी को एक बियाबान जगह पे छोड़ के जाना, हम अपने बच्चे को कहीं थोड़ी देर के लिए छोड़ के आए ना, तो कितने ख्यालात जहन में आते हैं, पता नहीं क्या कर रहा होगा कोई, पता नहीं कोई उसके पास ना आ जाए, कोई उससे बात ना करे, पता नहीं किस हाल में होगा। 5 मिनट भी कहीं छोड़ना इतना मुश्किल हो जाता है। और इधर देखिए, छोड़ा और चले गए, और वो भी ऐसे बेटे को जो कितनी दुआओं के बाद मिला, और फिर उससे भी ज्यादा कड़ा इम्तिहान, उससे भी ज्यादा कड़ा इम्तिहान जब बेटे को जिबा करने की का इम्तिहान आया, कि 100 साल का बूढ़ा है। और जब इंसान बूढ़ा हो जाता है ना, अपनी औलाद से उसको बड़ी एक्सपेक्टेशन होती, खास तौर पे इकलौता बेटा हो तो फिर कितनी एक्सपेक्टेशन होगी। और उनको हुक्म क्या मिला कि इसको जिबा कर दो, तो सेकंड थॉट नहीं है, फौरन तैयार होगा। कोई पूछा नहीं कि अल्लाह काफी नहीं हो गए, मैंने इम्तिहान काफी नहीं दे दी, अल्लाह अब एक और इम्तिहान, अल्लाह तू इसमें भी आजमाएगा, मुझसे कैसी ऐसी खता हो गई कि मेरे लिए ही सारे इम्तिहान। ऐसे ही कहते हैं ना हम लोग, तो यही कहते हैं, ये सारे इम्तिहान मेरे लिए रह गए हैं। कुछ भी नहीं, एक बेटा मिला है और उसको भी अल्लाह के हुक्म पे जिबा करने को तैयार होगा। अकबर, किसी ने कहा कि पता नहीं मेरे बेटे में अल्लाह को क्या दिखा कि उसने अपने पास ही बुला लिया, मेरा बेटा ही रह गया। इसने ये बात कही, अल्लाह अकबर, देखो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खुद कुर्बान करने के लिए चले गए, एक अल्लाह उठा ले उसके ऊपर ही हम इतनी बातें करें, एक खुद अपने हाथ से छुरी चलाना, हत्ता कि ये हो गया इम्तिहान लेने वाला, खुद तारीफ कर रहा है इब्राहिम, हर इम्तिहान में पूरे हुए, हर इम्तिहान। सुभान अल्लाह, ये होती है वफादारी का हक अदा करना। इसीलिए इतने बड़े बुलंद दर्जात मिले इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, ऐसे ही नहीं मिल गए, याद रखें। इम्तिहान इसीलिए आते हैं, इम्तिहानात को इंसान बुरा ना समझे, गिले शिकवे ना इसमें करे, क्योंकि अल्लाह ताला अपना बनाना चाहता है। जब अल्लाह ताला कोई बड़ी जिम्मेदारी डालना चाहता है या कोई बड़ी पोजीशन देना चाहता है ना, तो उसके लिए तैयार करता है इंसान को इम्तिहान डाल के। आप देखें, अच्छा इससे देखें, क्या एक नर्सरी के बच्चे से मास्टर्स का इम्तिहान लिया जाता है? नहीं, उसे नर्सरी का लिया जाएगा, फिर वो नर्सरी से फर्स्ट ग्रेड में आता है तो फिर फर्स्ट ग्रेड का लिया जाता है, फिर सेकंड ग्रेड में आता है तो उसका लिया जाता है, फिर वो और प्रोमोट होकर तीसरे में चला जाता है तो तीसरे का लिया जाता है। आगे से आके जितने बड़े बड़े दर्जे होते जाते हैं, जितने ग्रेड्स बढ़ते जाते हैं, जितना बड़ा दर्जा होता है ना, इम्तिहान भी उतना ही बड़ा होता है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इसलिए इतने बड़े इम्तिहान थे, दर्जे तो इतने बड़े थे, और अल्लाह ने और बड़े दर्जे देने थे, इसलिए और बड़े इम्तिहान। जाहिर है, मास्टर से नर्सरी वाले का इसलिए नहीं इम्तिहान लिया जाता कि मास्टर्स को मास्टर के लेवल का इम्तिहान देना तो वो पीएचडी तक पहुंचेगा, है ना। मैट्रिक के तालिबे इल्म से थर्ड ग्रेड का इम्तिहान नहीं लिया जाएगा, क्योंकि अगर वो 10th ग्रेड का इम्तिहान देगा तो 11th में जाएगा, थर्ड का इम्तिहान दे के वो 11th में नहीं जा सकता। तो समझे इस बात को, इम्तिहान बड़ा बड़ों का ही होता है। अल्लाह ताला जब बड़ा दर्जा देना चाहता है तो बड़ी आजमाइश डालते, जब बड़ा इनाम देना चाहता है तो बड़ी आजमाइश डालता है। और कई लोग इम्तिहान से इतना डरते हैं, इतने खौफजदा रहते हैं, कहते हैं इम्तिहान ना हो। आप अपनी क्लास में ही देख लें, सुभान अल्लाह, बहुत सारे लोग अभी तक इसलिए लिसनर बैठे हैं, बस हमें टेस्ट से बहुत डर लगता है। तो टेस्ट नहीं लिया तो फिर देखें, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का टेस्ट ना होता तो वो इब्राहिम खलीलुल्लाह ना बनते, ठीक है, अल्लाह के दोस्त ना बनते। ये आजमाइश ही है जो इंसान को बुलंद दर्जे अता फरमाती है, ये आजमाइशों की भट्टी से गुजरना पड़ता है इंसान को तो ऊपर चढ़ सकता है। अगर आप नीचे ही रहना चाहते हैं इस डर से कि नहीं आजमाइश ना इन टेस्ट ना ले लें कहीं हमसे, तो आप अपने बच्चों को भी फिर टेस्ट ना दिलाया करें, सारी जिंदगी उनको नर्सरी में ही रखना, ठीक है ना? ये ना हो कि वो कहीं प्रोमोट हो जाए। इतने छोटे छोटे बच्चे होते हैं, क्यों दिलाती हैं उनको टेस्ट? क्यों उनके ऊपर एक मुश्किल डालती हैं? ये आपको भी पता है कि मेरे बच्चे को ये कहाँ तक पहुंचाएगा इम्तिहान, इसीलिए आप उसको इम्तिहान देने देती हैं। 4-5 साल के बच्चे भी इम्तिहान दे रहे होते हैं, वो अपने लेवल का देते हैं, आपके अपने लेवल के इम्तिहान, लेकिन हम क्यों इम्तिहानों से ऐसा घबराते हैं कि साल हा साल तक लिसनर बने बैठे रहते हैं? टेस्ट, बस टेस्ट से बड़ा डर लगता है। आप एक टेस्ट ना ले तो फिर हम स्टूडेंट बन जाएंगे, तो फिर वो स्टूडेंट ही किस काबिल जो टेस्ट से घबराए? वो तो स्टूडेंट ही नहीं है जो टेस्ट नहीं देता, उनका प्रोमोशन उसकी तो है ही नहीं। तो टेस्ट आपकी काबिलियत को जानने के लिए, आप कितने काबिल हैं। देखें एक हदीस है, बड़ी प्यारी हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन मर्द और औरत की जान, औलाद और माल पर बराबर आजमाइश आती रहती। किस पे आती रहती है? कभी उसकी अपनी जान में आती है, कभी कोई बीमारी आ गई, कभी कोई और परेशानी आ गई, कभी कोई सदमा आ गया, कभी कोई आ गया, कभी औलाद में इंसान कोई सदमा देख लेता है, कभी उनकी कुछ ऐसी नाफरमानियां हैं, कभी कोई उनकी ऐसी, कभी दीन से दूरी, या कभी और कोई उनकी तरफ से ऐसी परेशानी इंसान को आती है, उसमें इंसान आजमाया जाता है। कभी माल में आजमाइश आ जाती है, माल को भी डाका पड़ गया, चोरी हो गई, जॉब चली गई, बिजनेस खत्म हो गया, तो बराबर आजमाइश आती रहती है और इनसे ना उसके गुनाह धुलते रहते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यहां तक कि वो सुभान अल्लाह, वो अल्लाह को इस हालत में मिलता है कि फिर इस पे कोई गुनाह ही नहीं होता। अल्लाहु अकबर, कि वो ऐसे धुल जाता है, ऐसे क्लीन हो जाता है बिल्कुल। क्योंकि देखिए, एक कांटा भी मोमिन को चुभता है तो उससे क्या होता है? उसके गुनाह झड़ते। तो देखिए, जब बराबर आजमाइश आती रहती है इंसान के अंदर, लो हम ही रह गए आजमाइशों के लिए, कभी हमें ये है, इसमें आजमाइश, कभी इसमें आजमाइश, कभी इसमें आजमाइश। अरे ये आजमाइश तो पाक कर रही थी कि फिर इंसान अल्लाह से किस हालत में मिलता है, यानी जब अल्लाह ताला के पास पहुंचेगा तो क्या होगा? सुभान अल्लाह, उस पे कोई गुनाह ही नहीं होगा। कितनी प्यारी हालत है। और दुनिया की ये फिर जो आजमाइशें ही कितनी हल्की हैं आखिरत के अजाबों के मुकाबले, कितने सस्ते छूट गए अगर यहीं पे सारे गुनाह जिसके धुल गए, कितना सस्ता छूट गया। आप देखें, जिसको अल्लाह ताला किसी आजमाइश में नहीं डालता, जिसको अल्लाह ताला किसी ऐसी मुश्किल में नहीं डालता, और वो गुनाह पे गुनाह करता चला जाता है, करता चला जाता है, अल्लाह ताला उसको पकड़ता ही नहीं, तो क्या होगा? ये तो अल्लाह ताला की उसके साथ भलाई नहीं है, इसलिए नहीं है कि ये तो गुनाहों से लदा फंदा जब वहां पहुंचेगा फिर सोचे क्या हाल, तो वहां के अजाब बर्दाश्त करना क्या आसान है? तो जब आजमाइश आए ना, समझ ले अल्लाह ने हमें अभी भुलाया नहीं है। ये ना आए तो तब फिक्र होनी चाहिए कि कहीं अल्लाह ने हमें भुला तो नहीं दिया। क्योंकि मैंने आपको अभी हदीस क्या सुनाई है, जिस ग्रोह से अल्लाह मोहब्बत करता है उनको आजमाइशों में डालता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मोहब्बत थी तो आजमाइश में डाला, तो फिक्र तब करें जब आजमाइश ना आए कि अल्लाह मुझे कहीं भूल तो नहीं गया, कि वहां के अजाबों के लिए मुझे रख दिया। और बाज औकात अल्लाह ताला अपने बंदों के दिलों की कमजोरियों को धोने के लिए उनको मुश्किलात में डालते, आजमाइशों में डालते, ताकि जो है ना ये इसकी कमजोरी धुल जाए। क्योंकि इंसान निखर आता है, जो इंसान की सलाहियतें इम्तिहान के वक्त सामने आती है ना, वो वैसे नहीं आती। एक कोई, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि सारे ही कहते हैं हम ईमान वाले, बड़े बड़े दावे करते हैं, हम ये कर दें, ये वो कर दें, जब टेस्ट आता है ना तब पता चलता है कि किस तरह से मैं परफॉर्म करने के काबिल हूं। और फिर लोगों की सिफारिशें ऐसी निखर के सामने आती कि पता चलता है वो ये तो हीरा था, ये क्या चीज था। आप देखें तमाम अंबिया के ऊपर कैसी कैसी आजमाइशें, यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखें उनके ऊपर कैसी आजमाइशें, मूसा अलैहिस्सलाम पे कैसी आजमाइशें। पूरी सूरह कहफ में आप देखते हैं जो मूसा और खिजर अलैहिस्सलाम का किस्सा, उसमें कैसी आजमाइशों की बात है। कहीं अल्लाह की कश्ती का तख्ता तोड़ रहे हैं, कभी लड़के को कत्ल कर रहे हैं। तो लोगों के नजदीक तो वो आजमाइश ही है ना अल्लाह ताला, लेकिन इंसान को किसी बड़ी आफत से बाज दफा निजात दिलाने के लिए उसके ऊपर ऐसे गम भेज देता। तो आजमाइश के वक्त एक बात जरूर याद रखें, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसाहा, अल्लाह ताला किसी पे इसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता, ठीक है। और दूसरी बात यह कि अगर बंदा आजमाइश में खुद कामयाब होना चाहता हो और पूरे इरादे और हिम्मत के साथ उसका सामना करे तो याद रखिएगा अल्लाह ताला की मदद जरूर आती है। देखिए ना मूसा अलैहिस्सलाम की जो वालदा थी, उन्होंने जब बेटे को दरिया में डाल दिया था, लेकिन आखिर माँ थी, उनका दिल बेकरार हो गया, तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, और मूसा की वालदा का दिल बेकरार हो गया, और करीब था कि वो मूसा के राज को जाहिर कर देती अगर हम उसके दिल को ना संभालते। सूरह कसस में है ये। तो याद रखिए जितनी सख्त आजमाइश होती है और इंसान उसमें जितनी साबित करनी दिखाता है, अल्लाह की तरफ से मदद भी उतनी ही बड़ी आती है। तो अगर हम ये बात समझ लेना सब कि दुनिया इम्तिहान का, यहाँ पे इम्तिहान हो के रहेगा, ये दुनिया खोने पाने कामयाबी नाकामी खुशी गम इसकी जगह नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इम्तिहान की जगह। हम तो यहीं पे सारे हमने पैमाने लगे, फलाना कामयाब फलाना फेल फलाना अच्छा रह गया फलाना बिल्कुल दुनिया में नाकाम हो गया, ये यहाँ पे थोड़ी ये मयार है, यहाँ की थोड़ी ये पैमाने, ये तो इम्तिहान का है। यहाँ गम इसलिए आते हैं कि इंसान अल्लाह ताला की जन्नत को छोड़ के दुनिया को अपना मुस्तकिल घर ना समझ बैठे। अल्लाह ताला इम्तिहान में डाल देते हैं, इंसान फिर अल्लाह को याद करने लगता है। तो अल्लाह ताला बेहिसी की नींद से जगाने के लिए भी इम्तिहान भेज देते हैं। तो ये बात याद रखिए कि दुनिया जन्नत नहीं बन सकती, असल मसला ही तब है, सारे गमों की जड़ पता है क्या है, कि हम इस दुनिया को जन्नत बनाना चाहते हैं। इसीलिए जब हमारी मर्जी का कुछ नहीं होता या हमारी ख्वाहिश पूरी नहीं होती या जैसे हम चाहते हैं हमारी चाहत के मुताबिक कुछ नहीं होता तो हम गम से निढाल हो जाते हैं। हालांकि ये दुनिया जन्नत नहीं है, ये तो इम्तिहान है, आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं। अल्लाह ताला ने बता दिया इस दुनिया में आने का हमारा मकसद क्या है, किस लिए मैंने जिंदगी को पैदा किया, फिर भी हम इसको जन्नत बनाने की में कोशिशों में लगे हुए दिन रात, और सारा दिन रात हमारा क्या एक ही काम होता है, जब आजमाइश आती है तो गम इतना हावी कर लेते हैं कि सारा वक्त रोना धोना शिकवे शिकायतें अपनी मजलूमी को जाहिर करना, ये बस सारा वक्त यही करते रहते, और इस तरह से नहीं करते कि मैं इस इम्तिहान से सीखूं, इसमें अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस करके दिखाऊं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया दुनिया के मामले में उसको देखो जो तुमसे नीचे है, उनको ना देखो जो तुम्हारे से ऊपर है। अगर इस तरह से करेगा ना इंसान तो अल्लाह की दी हुई नेमतों को हकीर समझना शुरू हो जाएगा, हाय फलाने के पास तो इतना मेरे पास तो कुछ भी नहीं, हाय मैं तो लूट गई मैं तो मारी गई। तो याद रखिए हमेशा आजमाइश को कभी मांगे नहीं, लेकिन आजमाइश आ जाए तो उसमें साबित कदमी से रहें। हमेशा गम को इस तरह से तारी ना कर लें कि हम कुछ करने के काबिल ना रहे, सब्र का मुजाहरा करें, अपनी जिंदगी के उन दिनों को याद करें जब अल्लाह ताला ने आपको कितनी मुश्किलों से निकाला, जब अल्लाह ताला ने आपके ऊपर इनामात किए, तो ये याद करने से ना ईमान मजबूत होता है, दिल को ये यकीन होता है कि अल्लाह मेरे लिए हर हाल में काफी है, अल्लाह ने जो पहले किया था वो अब भी कर सकता है, क्योंकि उसकी कुदरत अल्लाह अला कुल्ली शैन कदीर, हर चीज पर कादिर है। तो मुश्किलात से भी वही मुझे निकाल सकता है, परेशानियों से भी निकाल सकता है, या आजमाइश भी उसकी तरफ से आई है वही इससे निकालेगा। हम अल्लाह की नेमतों को, जो हमारे ऊपर बेशबहा नेमते हैं, उनकी तरफ नहीं देखते, जिनकी बारिश सुबह शाम हम पे होती है, हम देखते हैं तो उस चीज में जिसमें हमें आजमाया गया होता है, चाहे वो सेहत है, चाहे वो और कोई यानी रिस्क है, या वो कोई औलाद के कोई मसले मसाए, हमारे जहन पे बस वो ही हर वक्त हावी रहता है। वो जो अल्लाह ने तुम्हें इतनी और नेमतें दी हैं, उनका हक कब अदा करोगे, उनकी शुक्रगुजारी कब करोगे? तो उनकी तरफ भी तो देखिए, एक इम्तिहान आता है और हम बस उसी का गम मनाते रहते हैं। देखिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ, वो तो गम नहीं मनाने बैठे, हाय मेरा घर छूट गया, हाय मेरे घर वाले छूट गए, मेरी फैमिली छूट गई, हाय मैं तो दर बदर हो गया, हाय मैं तो ये हो गया, वो तो कुछ कर ही ना सकते। फिर उन्होंने जो अल्लाह की तरफ से इम्तिहान आए, जब इम्तिहानों में पूरा उतरे हैं, कोई गम नहीं मना रहे। हम ये नहीं कहीं पे भी देख रहे कि वो कोई गम मना रहे हैं, वो कोई शिकवे कर रहे हैं, वो कोई शिकायतें कर रहे हैं, वो कह रहे हैं अल्लाह अब बस नहीं हो गई, अब मेरा इम्तिहान इतना तूने ले लिया, बस नहीं हो गई। देखिए अल्लाह ताला ने फरमाया ना, शायद हो सकता तुम किसी चीज को अपने लिए बुरा समझो, हालांकि उसी ने तुम्हारे लिए खैर रखी है। इंसान तक रहो शय हुआ हुआ खैर लकुम, हो सकता है तुम समझो कि मेरे लिए इसमें बुराई है, हाय ये क्या गम मेरे ऊपर आ गया, ये कौन सी मुसीबत मेरे ऊपर आ गई, बाकी सारे तो आराम से फिर रहे हैं, मेरा घर क्यों टूट गया, मेरे ऊपर क्यों बीमारी आ गई, मेरी जॉब क्यों चली गई, हमें रिस्क के मसले क्यों आ गए, मेरे बच्चे के साथ ये क्यों हो गया, मेरे हस्बैंड का ये क्यों हो गया, हमारे यहाँ कोई फौतगी क्यों हो गई, हमें ये जुदाई का सदमा क्यों बर्दाश्त करना पड़ा। हम तो कितनी सारी कहते हैं, लेकिन अगर हम ये सोचे, हो सकता है तुम किसी चीज को बुरा समझो लेकिन उसमें ही तुम्हारे लिए भलाई हो, तो क्यों ये क्यों नहीं बात समझते। पूरा कुरान हमें बताता है, जब हम बिया की स्टोरीज आती है ना, ये देखो अगर हम उस जगह पे होते तो हम सोचते हाय ये तो कितना बुरा हो गया, हालांकि उसमें ही उनके लिए भलाई थी। यूसुफ अलैहिस्सलाम की जैसे मैंने अभी आपको बताया कहानी, उसमें आप देखते हैं हर हर जगह पे उनकी भलाई थी। तो कुएं में ना डाले जाते तो मिस्र ना पहुंचते, है ना, तो कैद खाने में ना पहुंचते तो इतना बड़ा ओहदा ना मिलता। कितनी कितनी मिसालें दूं आपको, बेशुमार मिसालें। तो बस सारी बातों की एक बात है कि ये इम्तिहान है ना, हमारी ही सलाहियतों को निखारने के लिए, हमारी ही तरबियत करने के लिए, हमारे ही खोट को निकालने के लिए, हमें खालिस करने के लिए। ये अल्लाह ताला का हमारे साथ कोई बुराई का, अल्लाह माफ करे, बुराई का इरादा नहीं है, ये तो मेरे रब का हमें अपना बनाने का तरीका है। अरे अल्लाह वो हमें इम्तिहान में ना डाले तो हम तो कभी उसकी तरफ आए ही ना, यकीन करें, क्या ऐसा नहीं है? इम्तिहान आते हैं तो फिर हम रोते पीटते अल्लाह की तरफ चलते हैं, उसकी तरफ रुजू करते हैं, उसके आगे गिड़गिड़ाते हैं, उससे करीब होते आते हैं। आपने नहीं ये नोट की कि जब इम्तिहान आता है इंसान अल्लाह से और करीब हो जाता है, जो मोमिन होता है, बाकी कई लोग तो ऐसे भी हैं जो दूर हो जाते हैं, लेकिन जो मोमिन होता है, जिसको अल्लाह ने करीब करना है ना, उससे मोहब्बत करता है अल्लाह ताला, तो उसको आजमा लेता है, तो उसको अपने करीब कर लेगा। इधर तवज्जो करो, तुम किधर दुनिया में फंसे हुए, आप देखते हैं हर इम्तिहान आपको और निखार देता है और अल्लाह से करीब कर देता है। आपको ये पता चलता है कोई सहारा सहारा नहीं है सिवाय अल्लाह के सहारे के, और जब उसकी तरफ आके, उसकी आगोश रहमत में आके इंसान पनाह लेता है ना, तो जो सुकून वहां पे मिलता है उसकी रहमत की चादर जब इंसान को ढांप लेती है, जो सुकून वहां पे मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। ये सब चीजें आजमाइशों से ही तो पता चलती है। तो इससे हौसला पकड़ा करें कि अल्लाह ताला ने अपने प्यारों को आजमाया। इतने बड़े इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उनकी भी आजमाइश हो गई थी। अच्छा, फिर और नंबर टू मतलब क्या है कलिमात से? कलिमात से मुराद शरीयत के अहकामात भी हैं। कि शरीयत के अहकामात से अल्लाह ताला ने उनको आजमाया। अच्छा, क्या ऐसे भी होता है कि शरीयत के अहकामात से भी इंसान आजमाया जाता है? आप आजमाए जाते हैं शरीयत के अहकामात से? जब अल्लाह ताला का कोई हुक्म आता है तो हमारा टेस्ट नहीं हो जाता? कैसे होता है टेस्ट? फिर आप क्या हम कहते हैं, लबैक कहते हैं, अल्लाह मैं हाजिर, अल्लाह मैं तैयार हूं करने के लिए, समय ना वाता ना कहते हैं कि अल्लाह मैंने सुन लिया, मैंने मान लिया। या आप कहते हैं समय ना वास ही ना, हमने सुन तो लिया, हमने कहा मानना, हमने करना तो वही है जो हम पहले से कर रहे हैं। तो शरीयत का हर हुक्म भी इंसान के लिए इम्तिहान होता है ना। तो उनको भी शरीयत के अहकामात दिए गए। कैसे दिए गए थे? हमने पढ़ा ना सुहफ इब्राहिम व मूसा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सुहफ भी थे, उनमें उनके लिए शरीयत के अहकामात थे। मसलन बहुत से अकवाल इसमें मिलते हैं कि वो क्या अहकामात थे, क्या चीजें थी जिनका हुक्म इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दिया गया। मैं चंद एक मैं आपके सामने रखती हूँ। कई जगह पे है कि 10 चीजों का हुक्म दिया गया, कई जगह पे है कि 30 चीजों का हुक्म दिया गया। बाहर कैफ जो भी था, उनमें आपको मैं बताती हूँ कि कुछ चीजों का उनको हुक्म दिया गया। जैसे अहकामाते हज उनको बताए गए, मूछों को कम करना। अब मर्दों के लिए हमारे मुल्कों में तो मूछ रखना बड़ी चीज समझी जाती है, कि वो कहते हैं मूछ नहीं तो कुछ नहीं, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी, हमने उलट कर लिया ना। तो उनका कहता है मूछ को कम करना, इम्तिहान हो गया ना। देखें, आपका मन कुछ चाहता है और अल्लाह का हुक्म कुछ और है। कुल्ली करना, नाक साफ करना, मिसवाक करना, सर के बाल मुंडवाना या रखवाना, तो मांग निकालना, नाखून काटना। अब देखें, हमारे में से औरतों को मैं कहूंगी, औरतों के लिए, कई औरतों के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान ही क्या हो जाता है, नाखून काटना। अल्लाह का हुक्म है कि नाखून काटो, नाखून ना बढ़ाए जाए। और जब ये शरीयत का हुक्म आ जाए कि नाखून काटने हैं, क्योंकि ये फितरत के सारे काम है, तो नाखून काटने का जब मामला आता है तो उस वक्त क्या करते हैं? नहीं तो ब्यूटी है ना ये, तो नाखून ना रखे तो फिर हमारे तो हाथ ही खूबसूरत नहीं लगेंगे। तो इम्तिहान हो गया ना, अल्लाह ताला ने उनको भी आजमाया था। हमारी भी आजमाइश होती है, जितने शरीयत के अहकाम आते सबसे हमारा टेस्ट हो रहा है। तो हम वहीं पे गिर जाते हैं, छोटे छोटे टेस्ट हैं हमारे, तो उनके अंदर ही हम तो पास ही नहीं होते। आगे क्या जाना है, कोई बड़ा इम्तिहान क्या आना है? नर्सरी के नर्सरी में ही पढ़े हैं। आप ये देख लेना, औरतों का तो इतना ही इम्तिहान काफी है आईब्रोज बनाने का। या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़े हदीस है, लानत की गई है ऐसी औरतों के ऊपर जो ये आईब्रोज को ये छेड़ती हैं, जो इसके बाल उखड़वाती हैं। नोचने वाली हूँ और नुचवाने वाली, दोनों के ऊपर लानत की है। तो फिर भी हम कहते हैं तो क्या हो गया, लानत के साथ ही घूम रहे हैं। मियाँ की नजर में तो खूबसूरत लगू ना, तो उस मियाँ की नजर में क्या खूबसूरत लगेगी जब अल्लाह ने लानत कर दी? तो कभी लानत पड़ा हुआ भी बंदा खूबसूरत लग सकता है ना? यार ये टैटूज बनाना भी उस हदीस में, तो वो भी करते हैं। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जैसे अपने नाखून काटना, जेरे नाफ के बाल काटना, खतना कराना, बगल के बाल साफ करना, पेशाब पखाना के बाद इस्तंजा करना, जुमा के दिन गुसल करना, तवाफ करना, सफा मरवा के दरमियान सही करना, रमी जिमार करना, तवाफ इफादा करना, ये सारे उनको हुक्म दिए गए थे। ठीक है, तो किसी हुक्म पे भी सुभान अल्लाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नो नहीं कहा। आई वेरी हार्ड, दैट्स नॉट फेयर, ये नहीं कहा। सब हुक्म आते गए और वो करते गए। सोच सकते हैं, हर हुक्म के ऊपर उन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म की तामील फरमाई। तो वहां पे जहां पे जो उन्होंने अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइशें आई, उनमें जो उन्होंने कुर्बानियां दी घर की और इस रास्ते में जो सबर करना था वो भी, बच्चों को छोड़ना और ये सब, और बच्चे की कुर्बानी, ये सब चीजें तो की। इसके अलावा जो हुक्म भी अल्लाह की तरफ से आया, हर हुक्म को उन्होंने लबैक फरमाया, हर हुक्म को उन्होंने माना। ये भी कहा जाता है कि सबसे पहले खतना कराने वाले, सबसे पहले मेहमान नवाजी करने वाले, सबसे पहले नाखून कटवाने वाले, सबसे पहले मूछें कम करने वाले, सबसे पहले सफेद बाल देखने वाले इब्राहिम अलैहिस्सलाम। सफेद बाल देख के उन्होंने पूछा था, ए अल्लाह ये क्या है? अल्लाह ताला ने जवाब दिया कि ये वकार और इज्जत है। कहने लगे फिर तो ए अल्लाह इसे और ज्यादा बढ़ा दे। इसी तरह सबसे पहले मिंबर पे खुतबा देने वाले, सबसे पहले कासिद भेजने वाले, सबसे पहले तलवार चलाने वाले, सबसे पहले मिसवाक करने वाले, सबसे पहले पानी से इस्तंजा करने वाले, सबसे पहले पाजामा पहनने वाले इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे। चाहिए ना, अल्लाह अकबर, वाकई फिर वो खलील कहलाने के लायक है। क्या ख्याल है? हम तो अपने आप को देखते हैं कि छोटी छोटी आजमाइशों में ही पूरे नहीं उतरते। इब्राहिम अलैहिस्सलाम हर आजमाइश में पूरे उतरे, तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? फरमाया, इन्नी जाइलुक लिन्नासी इमाम। ए इब्राहिम, बेशक मैं अब आपको बनाने वाला हूँ लोगों के लिए इमाम। देखिए जिसने इतने कलिमात को पूरा किया, देखिए हाँ ये एंड रिजल्ट नहीं मैंने पढ़ा, एंड रिजल्ट क्या था? जब सारी आजमाइशों में अल्लाह ने डाला या ये सारे अकामाते शरिया दिए, तो फअतम्महुन्ना, उसने पूरा कर दिया उन सब को। यानी ये कलेमात आसान नहीं थे, लेकिन इब्राहिम, हुन्ना की जमीर जो है ना, वैसे तो जो जिंदा हो उसके लिए जाती है, लेकिन यहाँ पे कलेमात की तरफ क्यों जा रही है? इसलिए कि ये कलेमात बहुत मुश्किल थे, बहुत ही अहकामात मुश्किल थे, ये आजमाइशें बहुत मुश्किल थी, लेकिन उन्होंने सबको पूरा किया। तो अल्लाह ताला ने इनाम में उनको तमाम लोगों का इमाम बना दिया, लिन्नासी लोगों के लिए। आज देखे सारे मजाहिब वाले उनको कितना एहतराम देते हैं, कितनी इज्जत देते हैं, अब्राहम कह के पुकारते हैं ना ये लोग, तो वो भी उनको मानते हैं, पैगंबर मानते हैं, कितनी रिस्पेक्ट है उनकी। ये सबके इमाम बने, सबके रोल मॉडल हैं, सब इनकी तरफ देखते हैं नेकी करने के लिए। तो सुभान अल्लाह, देखिए। अच्छा इमाम, एक और बात, इमाम किस में होता है? हिदायत में, इल्म में, है? इमामत का ताल्लुक इससे होता है। तो अब देखिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम, काला, उसने कहा, व मिन ज़ुर्रियती, ए अल्लाह मेरी औलाद में से भी अल्लाह इमाम बनाएगा। अच्छा देखिए, इंसान वैसे कितनी इंसान की वो होती ना, चाहे पैगंबर हो या दूसरे इंसान, को अपनी औलाद की कितनी फिक्र होती है। उसको जब कोई भी भलाई मिलती है ना, उनको कहा अल्लाह ताला ने कि आपको इमाम बना रहे हैं, तो फौरन क्या कह रहे हैं, अल्लाह मेरी औलाद में से भी इमाम बनाए बनाएगा, अल्लाह वो भी इमाम बनेगी। तो जो भलाई इंसान को मिलती है, उसका दिल चाहता है मेरे बच्चों को जरूर मिल जाए। फिर ये कैसे हो सकता है कि अगर किसी को दीन प्यारा है, अगर किसी को ये कुरान प्यारा हो, इसकी समझ आ जाए, आखरत की कामयाबी और नाकामी की समझ आ जाए, जन्नत और जहन्नुम की समझ आ जाए, फिर वो उसको अपनी औलाद के लिए ये ना चाहे कि उनको दीन मिले, फिर वो औलाद के लिए ये ना चाहे कि उसको जन्नत मिले, कामयाबी मिले आखरत की, कैसे हो सकता? फिर उसको अपनी औलाद के लिए दुनिया से ज्यादा उसकी आखरत की फिक्र क्यों ना पड़ जाए, जिसको खुद ये पता चल जाए। जब इंसान को खुद कोई चीज पता चल जाती है ना, और उसको उस पे यकीन हो जाता है, तो वही चीज वो अपनी औलाद के लिए चाहता है। देखिए जिनको, जिनके दिल के अंदर माल की मोहब्बत भरी हुई है, अब जितना भी चाहे वो कुरान पढ़ रहे हैं या कुछ है, उनके दिल से जो दुआ निकलेगी ना औलाद के लिए, बस यही होगी कि इनको भी बस माल मिल जाए, इनको जो जिसके ऊपर दुनिया छाई होगी, चाहे वो कितना ही अपने आप को दीनदार जाहिर करे, लेकिन वो दुनिया में इतना कुबाब है, और उसको दुनिया का ही शौक और इसी की मोहब्बत उसके दिल में, उसके दिल से जो दुआ निकलेगी औलाद के लिए, वो यही कहेगा अल्लाह इनको बस दुनिया दे दे, इनके कैरियर बन जाए, इनके ये कामयाबी हो जाए, वो हो जाए। क्योंकि उसके, चाहे वो इसको डिनाई करे, लेकिन उसके जहन पे, उसके दिल पे दुनिया ही दुनिया गालिब है। तो इंसान जो अपनी औलाद के लिए दुआएं मांगता है ना, उसमें आप देखें जो भी आप अपनी औलाद के लिए मांगते हैं उसके अंदर आप देखेंगे वो झलक होगी जो आपके दिल में है। आप देखना चाहती है ना आपके दिल में किस चीज की अहमियत है, देखेंगे आप अपनी औलाद के लिए क्या दुआ मांगते हैं। अगर उनकी दुनिया ही मांगती रहती है और उसी की फिक्रें आपके ऊपर गालिब हैं तो इसका मतलब अभी तक दुनिया निकली नहीं दिल से। मांगे दुनिया भी मांगे, ऐसा नहीं है, दुनिया की हसना पहले मांगी गई है, लेकिन अगर सिर्फ यही मांगती रहती है ना तो वो यकीन जो दिल में होना चाहिए, वो ईमान जो होना चाहिए आखिरत पे, वो नहीं है। इसका मतलब इंसान जो ये पढ़ रहा है ना वो ऐसे दिल में उतर नहीं रहा, वरना आपको जब आखिरत के खसारे का पता चलता तो आपकी सबसे बड़ी ये कोशिश होती है अल्लाह मेरी औलाद आखिरत के खसारे से बच जाए, वहां के नुकसान से बच जाए, अल्लाह वहां का कोई आग उनको ना छू जाए कहीं। लेकिन अभी तक यही फिक्रे हैं कि अल्लाह इसकी जॉब ना चली जाए। वो जॉब जाना तो बहुत छोटी बात है, अगर वो आग से ना बचा तो सबसे बड़ी नाकामी है। तो देख लें ये है अपने आप को जांचने का तरीका, देखें अपनी दुआएं, देखें अपनी दुआओं में क्या मांग रही हैं, किसके गिर्द दुआएं घूम रही हैं। बाज लोग उमरा हज के लिए भी जाने लगते हैं तो पीछे लोग यही दुआ करते हैं, बस वहां जाके ये दुआ करना फलाने का रिश्ता हो जाए, फलां का ये हो जाए, फलां का वहां हो, ये दुनिया की जिंदगी तो गुजर ही जाएगी, इसके ये इम्तिहान भी गुजर जाएंगे। जैसे ये दुनिया की जिंदगी खत्म हो जाएगी तो इस साथ इम्तिहान भी तो खत्म हो जाएगा, उसका क्या करोगे जो कभी नहीं खत्म होने वाला। तो वो कहने लगे वो मिन ज़ुर्रियती अल्लाह मेरी औलाद के लिए, अल्लाह वो भी इमाम बनेंगे, यानी नेकों के इमाम। कितना शौक है कि अल्लाह हमें देख के लोग नेकी करने वाले बन जाएं। इमाम वही होता है ना जो आगे आगे होता है नेकी में आगे चलने वाले। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, ला यनालु अहदे ज़ालिमीन, नहीं मेरा अहद ये मेरा वादा जालिमों के साथ नहीं है। ए इब्राहिम ये नहीं कि तेरी औलाद में से जो कोई ईमान भी ना लाए, जो कोई बागी हो, जो अल्लाह का नाफरमान हो, उसको भी इमाम बना दिया जाए। नहीं 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 नहीं, ये मेरा अहद जालिमों के साथ नहीं है। इसका मतलब यह है कि चाहे इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में से भी कोई हो, फिर भी अगर वो जालिम है तो उसके साथ अल्लाह का कोई वादा नहीं है किसी ओहदे का। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मुफ्त में मिल गई ये इमामत, बताएं उनको तो इतनी आजमाइशों से निकलने के बाद मिली है, इस भट्टी में, इस आजमाइशों की भट्टी से गुजरने के बाद ये ओहदा मिला इमामत का। तो बाकियों को ऐसे ही मुफ्त ही मिल जाए कि बस वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पोते हैं, पड़पोते हैं, उनकी जुर्रियत में से हैं, उनकी नस्ल में से हैं, हम सैयद हैं, हम फलां हैं, सिर्फ इस वजह से। ऐसा नहीं होता अल्लाह के हाँ, ये कानून नहीं है। इसे हमें क्या पता चला, कोई ये ना समझे मैं फलां की औलाद में से हूं, मेरे खालू फलां, मेरे चचा ये, मेरे दादा वो गद्दी नशीन, वो फलाने, ओ किसी से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा जब तक अपना अमल सही नहीं होगा। तो ये तो अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कह दिया जो इतनी खुद आजमाइशों से निकले हैं, वरना क्या होता, अल्लाह ताला फरमा देते कि इब्राहिम आपका करना ही काफी है, बस आपकी सारी औलाद ही बख्शी गई अब तो आपने इतना कुछ कर लिया तो अब आपकी औलाद का क्या इम्तिहान, बस ठीक है वो भी बख्शे गए। नहीं नहीं नहीं, अल्लाह के हाँ इंसाफ, इंसाफ है अल्लाह के। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उनके किया का मिला और औलाद जो करेगी उनको उनका मिलेगा। तो हम किन भूल भुलाइयों में है भाई कि फलां हमें बचा लेगा, फलां के साथ हम चल पड़ेंगे, मेरी अम्मी बड़ी नेक थी, मेरी दादी बड़ी नेक हुआ करती थी, मेरे फलाने ये हुआ करते थे। उनके ऊपर आप क्या फखर कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं मिलना अगर आपने सही अमल ना किया तो, और ना हमारी औलादों को हमसे फायदा पहुंच सकता है अगर वो सीधे रास्ते पर ना आए। समझ आ गई बात, दोनों चीजें समझ आ गई है ना। وَإِجْعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا, और जब बनाया हमने इस घर को लौटने की जगह लोगों के लिए और अमन की जगह। अब क्या है, कि अल्लाह ताला ने इस घर की तरफ इशारा फरमाया, कौन सा घर? जो खाना काबा है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने इसको बना दिया, इस घर को लौटने की जगह, यानी लोग बार बार इस तरफ लौटे। अब मैंने आपको बताया ना कि ये एक तरह से तमहीद शुरू हो रही है। अब जो किबला शिफ्ट होने वाला है, अब ये किबले की बात आ रही है। किबले के मेमार की बात तो पहले आ गई ना, किबले के बनाने वाले की नहीं, इन्होंने कंस्ट्रक्ट किया था ना, कंस्ट्रक्शन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने की थी, तो उनकी बात पहले आ गई। और अब किबले की बात आ रही है कि अल्लाह ताला ने इसको बार बार लौटने की जगह बना दिया, लोगों के लिए एक अमन की जगह बना दिया। देखिए सुभान अल्लाह, ये अल्लाह ताला की तरफ से एक मौजजा है। कि क्या है कि देखिए, दुनिया में कितनी खूबसूरत जगह कोई हो, कितनी सीनिक जगह, आप वहां पे 2-4 दफा चले जाए ना, तो उसके बाद इंसान कहता है अगली दफा किसी कहीं और वेकेशन पे चलते हैं, वो तो पहले भी देखी हुई है ना, हालांकि कितनी खूबसूरत हो, नहीं आप नहीं वहां पे जाना, आप कहीं और चले। लेकिन क्या बात है अल्लाह के घर की, कि इंसान जो नहीं गया उसको तो तड़प होती ही होती, जो जा चुका हो उसको उससे भी ज्यादा तड़प होती, कि वो कहता है अल्लाह दोबारा बुला ले, अल्लाह दोबारा बुला ले। हालांकि क्या है वहां पे, कोई सीनिक ब्यूटी है? एक घर है, एक कमरा है बस। क्या उसके अंदर अट्रैक्शन अल्लाह ताला ने रखी? ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ थी, वो जो आगे हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो अल्लाह ताला ने इसको बार बार लौटने की जगह बनाया कि बार बार लोग आते हैं इस घर पे। एक हदीस में भी आता है कि जो शख्स कुदरत रखता हो और फिर भी 5 साल तक मुसलसल उसको गुजर जाए और उसने हज ना किया हो और ये ना किया हो, तो फिर अल्लाह ताला को भी उसकी कोई परवाह नहीं, जिधर भी जाके यहूदी मरे नसरानी मरे, जो जो नहीं आता अल्लाह घर की परवाह ही नहीं करता। ये तो वो है लौटने की जगह, जो जिसको अल्लाह से मोहब्बत है ना, तो वो उसको उसके घर से मोहब्बत है। तो और अमन की जगह बना दिया, ये आज से नहीं, अमन की जगह, ये जमाना है जाहिलियत में जिस वक्त अभी इस्लाम भी नहीं आया था उस वक्त भी अमन की जगह थी। लोग अपने बाप के कातिल को यहाँ पे देख लेते थे ना, कहीं और नहीं मिल रहा, यहाँ पे नजर आ गया, बैतुल्लाह का तवाफ कर रहा है, हाथ नहीं लगाते थे उसको, क्यों? इसलिए नहीं लगाते थे कि नहीं, ये हुरमत वाली जगह है, इज्जत वाली जगह है, यहाँ पे अमन है, वहां पे किसी को कत्ल वारत करना, लड़ाई झगड़े करना, फसाद करना, सबसे ये टेंशन फ्री जोन, पीस की जगह है, मुकम्मल अमनो अमान है यहाँ। हमें भी ख्याल रखना चाहिए कि ये अमन की जगह है, हम इसका अमन पल्यूट ना करें। जब हम तवाफ करते हैं, कभी सेलफोन पे बातें कर रहे हैं लोग, कभी वहां पे तस्वीरें खिंचवा रहे हैं लोग, ये पोज बना बना के, कि हम नहीं, हमने अपनी यादगार रखनी है। यादगार क्या रखनी है? तुम उमरा हज के लिए क्यों आए हो, यहाँ पे क्यों आए हो? इसलिए कि ये अल्लाह के हाँ कयामत के दिन आपके आमाल नामे में ये नेकी लिखी हो, ये मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन जाए, यहाँ पे आके मैं कुछ सीखूं, अपनी आखरत को याद करूं, अल्लाह से कुर्ब मिले। कि हम उसको भी बस ये कि मैं तस्वीरें खींच के फेसबुक पे जल्दी से लगा दूं, लोगों को पता चल जाए मैं हज उमरे के लिए आई, तो ये काम वहां पे नहीं करने चाहिए। और फिर अल्लाह ताला ने फरमाया वत्तखिदू मिन मकामी इब्राहीम मुसल्ला, और बना लो मकाम इब्राहिम को नमाज की जगह। मकामी इब्राहिम क्या है? वो आपने देखा होगा, जो लोग गए हैं उन्होंने तो देखा ही है वहां पे, लेकिन जो नहीं आज तक जा सके, अल्लाह ताला लेकर जाए, सबको ही लेकर जाए, बार बार लेकर जाए, कि वो गोल्डन सा एक है ना खाना काबा के, जिधर का दरवाजा है काबा का, उसके आप सामने को देखें, वो एक गोल्डन सा ऐसे टोम सा बना हुआ है, उस गुंबद सा ऊपर बना हुआ है, और जब लोग तवाफ कर रहे होते हैं तो उसकी साइड से भी गुजर रहे होते हैं ना, तो अल्लाह ताला ने फरमाया उसको मुसल्ले की जगह बना लो। वो क्या है? वहां पे एक पत्थर है, वो पत्थर जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस घर की तामीर की थी, कंस्ट्रक्शन की थी ना, तो उस वक्त इस पत्थर पे वो खड़े होके इसकी तामीर करते थे, क्योंकि जाहिर है ना उनके पास कोई क्रेन थी, ना उनके पास कोई एलिवेटर, कोई लिफ्ट थी कि ऊपर जाए नीचे आए, तो किस तरह करते फिर? तो ये पत्थर था, अल्लाह ताला ने ऐसी एक अल्लाह की तरफ से मौजजा था कि जब वो कंस्ट्रक्शन कर रहे थे तो जब उनको ऊपर जाना होता था पत्थर ऊपर चला जाता था, नीचे जाना होता था नीचे चला जाता था। और सुभान अल्लाह उसके ऊपर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पैरों के निशान है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इसको मुसल्ला बना लो। अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत दी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशानों को कि उनको भी महफूज कर दिया और फरमाया कि इनको इमाम बनाओ। यानी अब आप जब जाते हैं तो जाहिर है जो लोग ने हज उमरा किया है अल्हम्दुलिल्लाह, तो तवाफ करके आप 2 रकत पढ़ते हैं तो मुकाम इब्राहिम के पीछे पढ़ते हैं, या मस्जिद हराम में कहीं पे भी पढ़ लें उसको बीच में रख लेते हैं, है ना। काबे को तो फेस कर रहे थे, इसको बीच में रखा होता है। तो यानी जब भी तवाफ करोगे तो इसको बीच में रख के नमाज अदा किया करो। तो सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला बताते हैं जो अल्लाह के रास्ते में कुर्बानियां देते हैं ना, जो अल्लाह के हुक्मों को के ऊपर लबई कहते हैं ना, उनके पैरों के निशान भी अल्लाह ताला ऐसे महफूज कर लेते हैं, और उनके पैरों के निशानों को भी अल्लाह ताला लोगों के लिए ये बना देते हैं यादगार कि ये हैं उसके कदमों के निशान जिसने अपने आप को अल्लाह के लिए खालिस कर दिया, जो अल्लाह का हो गया था, जिसने अपनी हर चीज अपने रब के सपुर्द कर दी थी। देखो इंसान कितनी कोशिश करता है मेरे मरने के बाद मेरा नाम बाकी रहे, मुझे ये हो जाए वो हो जाए, उसके लिए तस्वीरें बनाता है, वीडियो बनाता है, फलां करते हैं, एल्बम्स हमने इकट्ठी की हुई है। हाँ कभी कोई लोग याद करेंगे, याद करेंगे, यादगारें हमें कितनी प्यारी हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तो ना कोई पिक्चर ली, ना कोई वहां पे अपनी वीडियो बनाई, ना कोई और चीज की, ना लोगों को कहा कि मेरे पीछे याद करना मुझे। ये अल्लाह है ना जो ऐसे कदमों की भी कदरदानी करता है कि इन कदमों को भी अल्लाह ताला ने महफूज कर दिया। उन वो तो नहीं कह के गए थे, अल्लाह ताला ने कदरदानी की है ये। तो जो अल्लाह के प्यारे होते हैं ना, अल्लाह ताला इस तरह उनको रहती दुनिया तक कियामत तक के लिए, सुभान अल्लाह, देखिए 1000 साल तो ऑलरेडी गुजर चुके हैं, रहती दुनिया तक ये कदमों के निशान बाकी रहेंगे और लोग इसके पीछे नमाज पढ़ते रहेंगे, और अल्लाह ताला ने महफूज कर दिया हमेशा तक कयामत तक कि देखो ये मेरे प्यारे के कदमों के निशान है, अगर तुमने मेरा प्यारा बनना है ना तो इन्हीं निशानों की पैरवी करना, इन्हीं को फॉलो करना, इन्हीं कदमों को, तो मुझ तक पहुंच जाओ। सुभान अल्लाह। व अहिदना इला इब्राहिम व इस्माइला, और अहद लिया हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से और इस्माइल अलैहिस्सलाम से। क्यों इस्माइल अलैहिस्सलाम का नाम क्यों आया यहाँ पे? इसलिए वो भी कंस्ट्रक्ट कर रहे थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ, ये घर तामीर कर रहे थे। ये कहा जाता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए यहाँ पे और उन्होंने बताया इस्माइल अलैहिस्सलाम को कि अल्लाह ताला का ये हुक्म है कि उसका घर बनाया जाए, तो इस्माइल अलैहिस्सलाम ने उनके साथ मिल के फिर ये घर तामीर किया। तो अब यहाँ पे इस्माइल अलैहिस्सलाम का नाम इसलिए भी खास तौर पे लिया गया कि देखिए वो लोग यहूद तो इस्माइल अलैहिस्सलाम को मानते ही नहीं थे, उनको लिजिटिमेट औलाद ही नहीं समझते थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, कहते थे नऊज़ु बिल्लाह ये कोई हराम औलाद है, तो और उनका बिल्कुल एहतराम भी नहीं करते थे। तो अल्लाह ताला ने बताया कि वो तो अपने बाप के साथ काबे की तामीर में शामिल थे, फिर जब वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम मक्का आए, देखा इस्माइल अलैहिस्सलाम एक दरख्त के नीचे बैठे हुए तीर बना रहे, तो वो अपने वालिद को देख के खड़े हो गए, मुलाकात की, और फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब ये फरमाया कि अल्लाह ने एक काम का हुक्म दिया है, क्या तुम मेरी मदद करोगे इसमें? कहा क्यों नहीं, फौरन तैयार हो गए। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस टीले की तरफ इशारा किया जहां पे अल्लाह का घर था कि मुझे इसकी तामीर का हुक्म हुआ। तो फिर अल्लाह ताला ने जब ये तामीर हो गया तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि हम अहद लिया इनसे, पक्का वादा लिया इनसे, क्या कि अंतहिरा बैतिया लित्तौइफीन वल आकिफीन व रुक्का इस सुजूद, कि मेरे घर को आप पाक रखना, किन के लिए? तवाफ करने वाले के लिए, तकाफ करने वालों के लिए, रुकू सजदा करने वालों के लिए। यही बात सूरह हज में भी आई है आयत नंबर 26 में, वह इज बवअना लिब्राहिम मकान अल बैत أن لا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. کہ وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جبکہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو کعبہ کی جگہ بتا دی تھی کہ میرے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں، قیام کرنے والے، رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھنا. تو یہ وہاں پہ بھی آیت اسی طرح آئی ہے. تو اب طہارت کیا ہے اس گھر کی؟ طہارت دو طرح کی طہارت ہے، ایک تو ظاہری، جیسے میں نے آپ کو پچھلی دفعہ مسجد کا بھی بتایا تھا نا کہ مسجد کی ایک ظاہری پاکی ہے، ظاہری وہ اس کی میرے خیال ویرانی کی اس وقت باغ پہ آئی تھی کہ ایک ظاہری ہوتی اور ایک مانوی ہوتی. تو مسجد کی بھی ایک ظاہری اس کی پاکی صفائی ہے، اور اس میں کیا آتا ہے کہ وہاں پہ کوئی بدبو نہ ہو، کوئی کوڑا کرکٹ نہ ہو، کوئی گندگی نہ ہو، کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ عبادت کرنے والوں کے لیے وہاں پہ آنے میں کوئی رکاوٹ ہو، ان کو اچھا نہ لگے. کیونکہ عبادت کے اس سے آ رہے ہیں نا، جب آپ ایک ذہن لے کر آتے ہیں عبادت کا تو پاک صاف جگہ ہونی چاہیے تاکہ یکسو ہو کے اللہ کی طرف بالکل اپنی توجہ کر سکیں، ٹھیک ہے، فوکس کر سکیں. تو جب اگر کسی جگہ پہ گندگی ہوگی تو گندگی تو شیطان کی جگہ ہے. اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے ہمیں مسجدوں کو، یہ تو خاص طور پہ خانہ کعبہ کی بات ہے نا، لیکن اس میں پھر ساری مساجد آ جاتی ہیں کیونکہ اللہ کے گھر ہے نا ساری مسجد، کہ مسجدوں کو پاک صاف رکھنا کتنا ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے مسجدوں کے اندر دیکھیں یہ لہسن اور پیاز اور اس طرح کی چیزیں کھا کے آنے سے منع فرمایا. کیوں منع فرمایا؟ اس لیے کہ اس کی بھی ایک سمیل ہوتی ہے، تو جب کہیں سمیل ہوگی تو ظاہر سی بات ہے وہاں پہ لوگوں کا عبادت میں خلل پڑے گا. اور فرشتے یہاں پہ آتے ہیں مسجدوں میں، اللہ کے گھر ہے نا، تو اس لیے جب فرشتے جہاں پہ موجود ہوں تو فرشتے بدبو سے نفرت کرتے ہیں. تو ایک تو ہم عورتیں بھی، یہ نہیں ہے کہ گھر میں پیاز لہسن اور وہ کر کے کھانے پکا کے اور ہمارے کھانوں کی اتنی اسٹرانگ اسمیل ہوتی ہے وہ ابایوں میں گھس جاتی. اب وہ ابایا نہ کبھی دھونا نہ کچھ ہے، اسی کو بار بار پہن پہن کے مسجد چلے گئے. یہ چیزیں مسجد کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ صاف ستھرا لباس، کوئی جس میں اسمیل نہ ہو. یہ بھی نہیں کرنا کہ اوپر خوشبوئیں لگا کے چل پڑے، وہ تو بالکل ہی منع ہے. میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کو بتایا تھا، وہ بالکل منع ہے، نوٹ الاؤڈ. مسجد کے لیے پرفیوم نہیں یوز کرنا، لیکن ساتھ یہ، ہاں اتنی اسمیل کر سکتے ہیں جو آپ تک ہو، یا جو جیسے آپ کے گلے کوئی مل رہا ہے تو اس کو آئے گی، پھیلنے والی اسمیل نہ ہو. ٹھیک ہے، آپ نے کوئی ڈیوڈرنٹ لگا دیا، کوئی ایسا پاؤڈر لگا لیا کہ بھائی اسمیل نہ آئے. تو بدبو سے پاک رکھیں مسجدوں. آپ یہ بتائیں، یہ تو کپڑوں کا ہو گیا اور جگہ بھی تو پاک صاف رکھنی ہے. اب اس میں ٹوائلٹس کی سب سے زیادہ بات آ جاتی ہے. مسجد میں ہی ٹوائلٹس ہوتے ہیں، اگر عبادت کرنے والے آئیں اور ٹوائلٹس سے پریشان رہیں، اور خاص طور پہ جن جو بڑی مسجد ہوتی ہیں جہاں پہ بہت زیادہ لوگوں کی تعداد ہوتی ہے، جیسے وہاں پہ مکہ میں یا مدینہ میں، تو لوگ ٹوائلٹس کا بھی حشر کر دیتے ہیں. اس وقت یہ بات کو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے عہد لیا تھا کہ میری مسجد کو، میری گھر کو پاک صاف رکھنا، اور ہم گندگی مچا رہے ہیں آ کے اور ہم پرواہ نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں خود ہی وہ صاف کریں گے. آپ وہاں پہ پہنچ کے تو بالکل ہی ایسے ہو جاتے ہیں نا کہ لوگوں نے اس قدر گندگی مچائی ہوتی کہ انتہا سے صاف. جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ میرے گھر کو صاف، پاک صاف رکھو، سوچے پھر آپ کتنی یہاں پہ صفائی کی ضرورت. اسی طرح اور کوئی بدبودار چیز ہے وہ مسجد میں نہیں لے کر آنی چاہیے یا نہیں اس کا استعمال ہونا چاہیے. جیسے کئی لوگ سگریٹ پیتے ہیں، ان کی کپڑوں سے بھی سگریٹ کی سمیل آ رہی تھی، دوسرے نمازی اس سے پریشان اور بیزار ہوتے، تو ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. تو یہ سب چیزیں دیکھیں، یہ مسجد کے احترام کی پہلے بھی بات آئی تھی کہ اللہ کا حکم ہے. اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی بہت کسی کے اوپر احسان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ان جگہوں کو پاک صاف رکھا جائے. اپنے گھروں کو صاف رکھنے کے لیے ہم کتنا تردد کرتے ہیں، کبھی ایئر فریشنر لگاتے ہیں، کبھی کینڈلز جلاتے ہیں، اور اللہ کے گھر کے لیے کبھی وہاں پہ ایسے کھانے لے کر آتے ہیں، ایسے کھانے وہاں پہ کھائے جاتے ہیں کہ ان کی اسمیل ہی، خاص طور پہ جس جگہ پہ نماز ہو رہی ہو وہاں پہ ایسے کھانے نہیں لانے چاہیے اور کھانے نہیں چاہیے جن سے، جن کی اتنی اسمیل ہو کہ لوگوں کو بس کھانے کی اسمیل آ رہی ہے. مسجد کا ماحول اتنا پاکیزہ ہونا چاہیے کیونکہ وہاں پہ یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا کام کرنا. تو ایک تو یہ بات ہوئی. اچھا دیکھیں، سبحان اللہ، اس سے ایک بات مجھے یاد آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی دیوار پہ ایک دفعہ بلغم لگا ہوا دیکھا تھا، اسی بندی نے لگا دیا ہو. تو وہ سبحان اللہ ہمارے نبی نے اپنے ہاتھوں سے اس کو کھرچ دیا, اسکریچ کر کے اس کو اتارا. کہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں شرم نہیں محسوس کی کہ میں کیوں اتاروں, یا فلاں تم ادھر آؤ اور فلاں کو بلاؤ اور کسی صفائی کرنے والے کو بلاؤ کہ وہ یہ آ کے صاف کرے. خود اپنے ہاتھوں سے. ہم تو چھوٹی چیز مسجد میں پڑی ہو تو نہیں اٹھاتے کہ ہمیں کیا ضرورت, خود ہی صاف کریں. مسجدوں کا احترام ہے, دیکھیں مسجد کا احترام وہی کرے گا جس کے دل میں اللہ کی تعظیم ہوگی, کیونکہ یہ شاعر اللہ ہیں, یہ اللہ کی نشانیاں ہیں, ان سے اللہ ہی یاد آتا ہے. تو جو اللہ کی تعظیم کرتا ہوگا نا, وہ مسجد کا بھی احترام کرے گا. یہ اللہ کا گھر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے اور ان کی خدمت کرنے والے اللہ کے دوست اور محبوب ہیں. سبحان اللہ. اس لیے اگر اللہ کے دوست اور محبوب بننا ہے نا, تو اللہ کے گھر کو آباد بھی کرنا ہے اور اس کی خدمت بھی کرنی ہے. کبھی بھی نہ آر محسوس کریں کہ مجھے یہاں پہ ویکیوم کرنا پڑا, مجھے یہاں پہ یہ کرنا پڑا, مجھے کوئی چیز اٹھانی پڑی, اور لوگ تو ایسے کرتے ہیں اور دیکھو ہم اٹھا رہے ہیں. اللہ نے آپ کو نیکی کا موقع دے دیا, آپ اس طرح اللہ کے محبوب بن سکتے ہیں. تو ان کو ایک یہ پاکی ہوگی. دوسری پاکی کیا؟ مانوی طہارت, کہ شرک نہ یہاں پہ ہو, یہاں پہ اللہ کے علاوہ اوروں کے ذکر نہ کیے جائیں. ٹھیک ہے, پیچھے پیچھے ہم نے آیات میں پڑھا تھا نا کہ مسجد کے اندر صرف اللہ کا ذکر بلند ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ بس ادھر کی کہانیاں, ان کے قصے, اولیاء کے قصے, فلانے کے قصے, اس کی وہ باتیں, اس کی باتیں, کوئی شعر و شاعری کوئی ایسی نہیں. مسجد اللہ کا گھر ہے, یہاں پہ اللہ کا نام بلند ہو بس. اور کس کے لیے؟ لطائفین, خاص طور پہ. یہ تو بیت اللہ سے ہی ایسوسیٹ چیز ہے کہ طواف. طواف آپ کو پتا ہے ایک ایسی عبادت ہے جو دنیا میں آپ کہیں نہیں کر سکتے, کسی جگہ کا آپ طواف نہیں کر سکتے سوائے بیت اللہ کے. لوگ قبروں کا, اپنے پیروں کی قبروں کا طواف شروع کر دیتے, لیکن طواف کہیں بھی اور حرام ہے. کسی کی قبر کا, کسی جگہ کا طواف نہیں ہے, صرف بیت اللہ کا طواف کیا جا سکتا ہے. یہ ایسی عبادت ہے کہ آپ جب وہاں پہ جائیں تو یہ علماء فرماتے ہیں کہ وہاں پہ خانہ کعبہ میں طواف نماز سے بھی افضل ہے. کہ آپ نفلی نماز پڑھنے کھڑے ہو جاتے نا, اس سے بھی افضل وہاں پہ طواف ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نماز تو آپ کہیں پہ بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن طواف آپ دنیا میں کہیں نہیں کر سکتے. طواف کے بعد دو نفل تو پڑھ ہی لیں گے. آپ کی فینا, اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے, رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے. اس کا مطلب مسجدیں ان کاموں کے لیے کہ طواف تو نہیں, باقی مسجدیں اعتکاف اور رکوع سجدہ یعنی نماز کے لیے, ان کاموں کے لیے مسجد ہے. اور باقی بیت اللہ جو ہے وہاں پہ طواف بھی ہوگا.